नमस्कार भारत, 18 अक्टूबर शुक्रवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सैन्य अभियान रोका, डोनाल्ड ट्रंप ने की तारीफ।
I just want to thank and congratulate the President Erdogan. He's a friend of mine and I'm glad we didn't have a problem.
भारत बांग्लादेश सीमा पर फायरिंग, एक BSF जवान की मौत। सुनवाएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से खास बातचीत।
न्यायालय में केस निर्णय लगा है, उसमें गांधी वध के केस में सावरकर निर्दोष बाहर आए हैं। सावरकर एक प्रखर देशभक्त हैं, उनका जीवन ने, उनके परिवार ने देश के लिए पूरी तरह अपना जीवन समर्पित किया है।
आज फिर होगा महात्मा गांधी से जुड़ा एक खास किस्सा।
महात्मा गांधी छुआछूत के सख्त खिलाफ थे।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार गुरप्रीत सैनी से। तुर्की अमेरिका के कहने पर सीरिया में कुर्दों के खिलाफ सैन्य अभियान रोकने पर राजी हो गया है। कुर्दों ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इस घोषणा के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की पर लगाए प्रतिबंध वापस ले लिए हैं, लेकिन विपक्षी डेमोक्रेट नेता प्रतिबंध वापस लेने के ट्रंप के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे अमेरिका की विदेश नीति की विश्वसनीयता कम होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि उनके नए ब्रेग्जिट समझौते को ब्रिटेन की संसद में समर्थन मिलेगा। यूरोपीय संघ के नेताओं ने उनके समझौते पर सर्वसम्मति दी है, जिसके बाद शनिवार को ब्रिटेन की संसद में इस पर वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सांसदों से अपील की कि वो समझौते के पक्ष में मतदान करके इस महीने के आखिर तक ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करवाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जेव ने अमरीका और चीन के बीच व्यापार को लेकर हुई बातचीत में प्रगति का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है कि दोनों देशों में मतभेदों को दूर करने के लिए और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि नए आयात शुल्क और करों की वजह से अगले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था को $700 अरब का नुकसान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना है कि यूक्रेन की सैन्य मदद वहां की सरकार पर दबाव बनाने के लिए रोकी गई थी। व्हाइट हाउस में कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ मिक मोविनी ने कहा कि प्रशासन चाहता था कि यूक्रेन 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जाँच करे, लेकिन मिक मोविनी ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन पर जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ जांच शुरू करने का कोई दबाव नहीं बनाया गया था। मिक मोविनी के बयान पर डेमोक्रेटिक नेता एडम शिफ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने माना कि एक अहम सहयोगी की सैन्य मदद इसलिए रोकी गई क्योंकि राष्ट्रपति चाहते थे कि वो डेमोक्रेट्स के खिलाफ जांच शुरू करें। उन्होंने साफ तौर पर एक राजनीतिक कारण की वजह से एक महत्वपूर्ण सैन्य मदद रोकी। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के राष्ट्रपति के दायित्व का अभूतपूर्व उल्लंघन है। ये थे डेमोक्रेटिक नेता एडम शिफ। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। घोषणा की गई है कि अगले साल होने वाला G7 सम्मेलन डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित गोल्फ क्लब में होगा। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से इससे कोई फायदा नहीं होगा।
Donald Trump's brand is probably strong enough as it is and he doesn't need any more help on that. This is not like it's the most
Donald Trump ka brand pehle se hi kafi jana mana hai. Unhe iske liye ab kisi ki madad ki zarurat nahi hai. Duniya bhar mein log is brand ko pehchante hain, isliye isse unka koi vyaktigat fayda nahi hone wala hai. Mujhe pata tha ki is faisle ki rajneetik aalochna hogi aur Donald Trump ki bhi aalochna hogi. Wo kuch bhi kare, unki aalochna hogi hi, lekin isse unhe kisi tarah ka fayda nahi hone wala hai. ये थे व्हाइट हाउस के अधिकारी मिक मोविनी। अमेरिका की सबसे बदनाम जेल को बंद करने के लिए न्यूयॉर्क में वोटिंग हुई, जिसके बाद इसे 2026 तक बंद करने का फैसला किया गया। न्यूयॉर्क की सिटी काउंसिल के स्पीकर ने कहा कि ये जेल क्रूरता और अमानवीयता का प्रतीक है। राइकर्स आइलैंड नाम की इस जेल में करीब 7,000 लोग कैद हैं। ये जेल 1932 में बनी थी। जेल की बुरी हालत और यहाँ होने वाली हिंसा को देखते हुए अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा था कि यहाँ कैदियों के संवैधानिक अधिकारों का लगातार उल्लंघन होता है। BBC समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। अमेरिका ने घोषणा की है कि तुर्की ने उत्तरी सीरिया में कुर्द बलों के खिलाफ अपना सैन्य अभियान अस्थायी रूप से रोकने पर सहमति दे दी है। तुर्की ने अमेरिका से बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी प्रशंसा की है, वहीं एक कुर्द कमांडर ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
तुर्की उत्तरी सीरिया में अपना सैन्य अभियान रोकने पर राजी हो गया है ताकि कुर्द नेतृत्व वाले बल पीछे हट सके। ये घोषणा अंकारा में अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस और तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोगान के बीच मुलाकात के बाद की गई। सभी सैन्य अभियानों को अगले 5 दिन तक के लिए रोक दिया गया है और अमरीका कुर्द बलों को व्यवस्थित तरीके से वापसी कराने में मदद करेगा। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चावुशोलू ने कहा, हम अपना अभियान रोकने जा रहे हैं ताकि पीके के बल 120 घंटे में सेफ जोन से बाहर निकल जाएं। ये संघर्ष विराम नहीं है, हम सिर्फ अभियान रोक रहे हैं। विदेश मंत्री मेवलुत ने ये भी कहा कि तुर्की ऑपरेशन स्थगित कर रहा है, समाप्त नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तभी खत्म किया जाएगा जब कुर्द लड़ाके पूरी तरह से क्षेत्र से हट जाएंगे। तुर्की ने पिछले सप्ताह इस अभियान की शुरुआत की थी। तुर्की के मुताबिक इसका मकसद कुर्द बलों को सीमा से पीछे धकेलकर सीरियाई शरणार्थियों के लिए एक सेफ जोन बनाना है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के इस फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने एक ट्वीट किया कि इससे लाखों जानें बच जाएंगी। ट्रंप ने कहा,
I just want to thank and congratulate the President Erdogan. He's a friend of mine.
मैं राष्ट्रपति अर्दोगान को शुक्रिया कहना चाहता हूँ और उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। वो मेरे दोस्त हैं और वो एक मजबूत शख्स हैं और उन्होंने सही काम किया है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 3 दिन पहले तुर्की पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे अब उनकी जरूरत नहीं है। हालांकि अमेरिका और तुर्की के बीच इस बैठक में कुर्द बलों के नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था, लेकिन अभियान रोकने की घोषणा के बाद एक वरिष्ठ कुर्दिश कमांडर ने कहा कि उनके सुरक्षा बल 5 दिन लड़ाई रोकने के फैसले को स्वीकार करते हैं। YPG बलों के कमांडर मजलूम कोबनी ने कहा कि उनके सुरक्षा बल इस संघर्ष विराम को सफल बनाने की हर कोशिश करेंगे। तुर्की उत्तरी सीरिया में कुर्द बलों पर तब से हमले कर रहा है जब से अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को वहां से वापस बुलाने का फैसला किया है। उत्तरी सीरिया से सेना को वापस बुलाने के बाद अमरीका की आलोचना हो रही है। आलोचक कह रहे हैं कि इसने तुर्की को सैन्य हमला करने के लिए हरी झंडी दे दी है। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में कुर्द बलों के नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस अमरीका के साथ ही रही हैं। हालांकि ये भी डर बना हुआ है कि इस अस्थिरता के कारण उत्तरी सीरिया में वापस जिहादी समूह का उदय हो सकता है। SDF में कुर्द लड़ाकों के बल पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स यानी YPG का प्रभुत्व है और इन्हें तुर्की आतंकी मानता है। तुर्की का मानना है कि ये कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK का ही विस्तार है जो उसके क्षेत्र में कुर्दों के स्वायत्त राज्य के लिए लड़ते रहे हैं।
तुर्की ने कुर्दों के खिलाफ सैन्य अभियान रोका। रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। भारत बांग्लादेश सीमा पर कल एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। बांग्लादेश के सुरक्षा बल बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश की फायरिंग में भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के एक जवान की मौत हो गई और एक जवान घायल हो गया। दोनों पक्षों के बीच मछुआरों की रिहाई को लेकर फ्लैग मीटिंग हो रही थी जिसके बाद ये घटना हुई। इस बारे में और जानकारी के लिए BBC संवाददाता कुलदीप मिश्र ने BBC बांग्ला सेवा के संवाददाता अमिताभ भट्टासाली से बात की।
देखिए, BSF का कहना है कि आज सुबह मुर्शिदाबाद जिले में जो रिवर पद्मा है वहाँ कुछ मछुआरे मछली पकड़ने निकले थे अपनी नाव से और करीब 9:30 बजे 2 मछुआरे BSF के जो वहाँ बॉर्डर पोस्ट है वहाँ आके रिपोर्ट किया कि एक तीसरे मछुआरे को DGB ने बॉर्डर बांग्लादेश ने पकड़ रखा है और BSF को बुलाया गया कि फ्लैग मीटिंग करके उनको छुड़ा के लाया जाए। तो ये बात सुनते ही BSF के जो पोस्ट कमांडर है और 5 अन्य जवान वो एक स्पीड बोट से बांग्लादेश की तरफ गए थे और वहाँ बीजीबी की जो बटालियन है वहां उनसे बातचीत किया, फ्लैग मीटिंग किया, और बीएसएफ के जो दक्षिणी बंगाल सीमा क्षेत्र के जो डीआईजी है एसएस गुलेरिया, उन्होंने बीबीसी को बताया कि जब फ्लैग मीटिंग चल ही रहा था तो पहले तो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों ने पकड़े हुए मछुआरे को छोड़ने से इनकार कर दिया, ये कहा कि उनके हायर ऑफिशियल्स के ऑर्डर के बिना वो छोड़ नहीं सकते, और बातों बातों में बीएसएफ के जवान जो गए थे फ्लैग मीटिंग करने उनको लगा कि बीजीबी के जो जवान हैं वो घेर ले रहे हैं, ट्रबल हो सकता है, ये सेंस करके वो वहां से स्पीड बोट से निकल पड़े वापस भारत के लिए, और उसी वक्त गोली चलाया गया और जो एक गोली लगी हेड कांस्टेबल विजय वान सिंह के सर पे, और जो नाव जो चला रहा था स्पीड बोट चला रहा था उन जवान के दाहिने हाथ में गोली लगी, और जब मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में बहरमपुर में उनको लाया गया तो विजय वान सिंह रास्ते में ही उनका निधन हो गया।
जी, और इस घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं?
शाम को एक फ्लैग मीटिंग हुई है, बीएसएफ और बीजीबी के आला ऑफिसर्स वहां मौजूद है, और फ्लैग मीटिंग में ये तय हुआ कि बीजीबी पूरी घटना की जांच करेगी, पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीएसएफ का जो वर्जन है ये पूरी घटना क्रम में तो उसमें कुछ फैब्रिकेटेड पार्ट भी है, उनका ये आरोप भी है कि बीएसएफ ने पहले गोली चलाई, पर बीजीबी की जो रिएक्शन है इसके बारे में मैंने डीआईजी एसएस गुलेरिया से पूछा था कि बीजीबी का ये कहना है, उन्होंने कहा कि ये गलत बात कर रहे हैं बीजीबी के ये ऑफिसर।
ये कितना असामान्य है ये भी आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि हम ये सुनते रहे हैं कि बीएसएफ और बीजीपी जो दोनों बांग्लादेश और भारत दोनों के जो सीमा सुरक्षा बल हैं उनके बीच बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और सहयोग के साथ वो अब तक एक दूसरे से बर्ताव करते रहे।
जी बिल्कुल, ये पिछले 10-12 साल से जो हम देख रहे हैं कि बीजीबी और बीएसएफ ये दो जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है इनमें से बहुत ही अच्छा संपर्क है, हालांकि जो बांग्लादेश की पहले का जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स रहा है बीडीआर जो बांग्लादेश राइफल्स वो एक म्यूटिनी के बाद उसको बैन कर दिया गया था, पर ये जो बीजीबी नई रूप से जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बनी इनके साथ बीएसएफ की बहुत ही बढ़िया संपर्क है, और पिछले ही हफ्ते बीजीबी के कई ऑफिसर अपने परिवार को लेकर के आए थे कोलकाता, यहाँ रहे हैं, इंटरेक्ट किए हैं, और दोनों फोर्स में बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन भी है। इस हालात में एक दूसरे के ऊपर गोली चलाना और वो भी फ्लैग मीटिंग के दौरान, ये बहुत ही पहले कभी भी नहीं हुआ है, पर ये गोली चली क्यों यही अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
भारत बांग्लादेश सीमा पर गोलीबारी, अधिक जानकारी दे रहे थे अमिताभ भट्टासाली। और अब रुख करते हैं चुनावी राज्य महाराष्ट्र का। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे भाजपा नेता लगातार कश्मीर और अनुच्छेद 370 के मुद्दे को उठा रहे हैं। कल बीड में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं वे उनके लिए व्यवस्था करवा सकते हैं। उन्होंने इस मसले पर कांग्रेस नेताओं के बयानों का जिक्र करते हुए उनकी आलोचना की। महाराष्ट्र की राजनीति में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित ने नितिन गडकरी से बात की और उनसे सबसे पहले यही पूछा कि महाराष्ट्र के चुनाव में कश्मीर का मुद्दा क्यों छाया हुआ है।
देखिए, कश्मीर का मुद्दा एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दा है और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इस मुद्दे के विरोध में लगातार बातें की है, और जब महाराष्ट्र देश में ही है तो राष्ट्रीय प्रश्नों की चर्चा होना भी स्वाभाविक है।
पर आर्थिक संकट है, बाढ़ है, सूखा है, इसकी चर्चा कब होगी?
बाढ़ और सूखा तो है नहीं अभी, बाढ़
का इम्पैक्ट तो है।
देखिए, ये तो कोई सरकार के कारण बाढ़ और सूखा नहीं होता, ये तो पानी कम ज्यादा के कारण होता है और ये तो निसर्ग की साइकिल होती है।
पर रिहैबिलिटेशन करने में सरकार का रोल
काफी अच्छा काम किया है सरकार ने, लगभग इसके बारे में कोई तकरार नहीं है।
तो अगर 370 की ही चर्चा करें तो कश्मीर में अभी जो हालात है वो वैसे ही बने हुए हैं जैसे थे, तो सरकार आगे क्या सोच रही है, आगे क्या आपका रोल?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, अभी काफी कश्मीर नॉर्मलाइज हुआ है, आतंकवादियों के साथ की जो मुठभेड़ थी वो घटनाएं काफी कम हुई है
क्योंकि वहाँ हैवी प्रेजेंस है सिक्योरिटी फोर्सेस का।
नहीं, मुझे बताइए कि पाकिस्तान लगातार खुरापत करता है, आतंकवादी संगठनों को मदद करके उनको भेजता है और उसको कंट्रोल करने में भारत की जो फौज है, पुलिस है, वो यशस्वी हुए हैं और आज कश्मीर की स्थिति सामान्य है, कश्मीर का विकास भी होगा और मेरे विभाग की ओर से मैं कश्मीर के लिए विशेष नीति निर्धारण भी कर रहा हूँ।
आप कह रहे हैं वहाँ स्थिति जो है सामान्य है, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर है वहाँ श्रीनगर में वो बता रहे हैं कि कश्मीर में अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है सिचुएशन, अभी भी लोग बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, अभी भी दुकानें नहीं खुल रही। आपको पता होगा कि एक ट्रकर की हत्या भी वहां पे की गई।
देखो इकट दुकट छोटी मोटी घटनाएं होती होगी, पर बाय एंड लार्ज बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में लड़के जा रहे हैं, उनका जनजीवन सुस्त स्थिति में आ गया है और उद्योग व्यवसाय ठीक चल रहे हैं, सेब की खरीदी हुई है और आने वाले समय में कश्मीर में 370 के कारण जो विकास की रफ्तार जो धीमी हुई थी अब वो गतिशील बनेगी। आईटी कंपनीज आएगी, होटल्स आएंगे, पर्यटन का व्यवसाय बढ़ेगा, पर्यटक भी आएंगे और कश्मीर की इकोनॉमी मजबूत होकर नए रोजगार की निर्मिति होगी।
जो सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी तादाद में वहां रखी गई है वो कब तक कम करने
के? धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेस कम होगी। देखो ये सोशो इकोनॉमिक विषय भी महत्वपूर्ण है। कश्मीर में भुखमरी और गरीबी बहुत ज्यादा है और अभी तक जो भी पैसा भारत सरकार से गया वो लोगों तक पहुंचा नहीं है।
महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप काफी लास्ट स्टेज में कैंपेनिंग में आए और इतना लेट क्यों हुआ इसके बारे में सवाल पूछे गए थे, तो क्या आपको लगता है इसकी क्या वजह थी? आप शुरुआती दौर में नहीं थे जब मैनिफेस्टो डिक्लेयर हुआ, जब अलायंस अनाउंस किया गया?
नहीं, आप तो जिस दिन फॉर्म भरे गए उसी दिन नागपुर में बहुत बड़ी रैली निकली, देवेंद्र जी और मैंने जाकर फॉर्म भरे और दूसरे दिन से मैं प्रचार में लगा हूँ। पर विदर्भ को मैंने ज्यादा, क्योंकि मैंने अपने काम की शुरुआत विदर्भ में की और जो सरकार बनी वो विदर्भ के कारण बनी है।
तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको दरकिनार किया गया या साइडलाइन किया गया?
नहीं, मुझे कोई साइडलाइन कर नहीं सकता, ना मुझे किया है।
सावरकर का नाम फिर से चर्चा में आया क्योंकि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने कहा है कि सावरकर को हम भारत रत्न देंगे अगर हमारी सरकार आएगी तो। कांग्रेस ने कहा है कि उनका नाम गांधी असैसिनेशन केस से जुड़ा हुआ था, आपकी इसके ऊपर क्या रिएक्शन?
देखो जो न्यायालय में केस निर्णय लगा है उसमें गांधी वध के केस में सावरकर निर्दोष बाहर आए हैं। सावरकर एक प्रखर देशभक्त है, उनका जीवन ने, उनके परिवार ने देश के लिए पूरी तरह अपना जीवन समर्पित किया है और इसलिए सावरकर जी का अपमान हो, एक देशभक्त का, क्रांतिकारक का अपमान हो, ऐसा काम किसी ने नहीं करना चाहिए। उनके विचारों के बारे में मतभेद हो सकते हैं और सावरकर हमारी प्रेरणा स्रोत रहे और इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले और स्वतंत्र सावरकर इन दोनों को ये भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए, ऐसा विषय आगे आया।
ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिनसे बात कर रहे थे बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित। दिल्ली में प्रदूषण स्तर बीते कुछ दिनों में काफी बढ़ गया है। हरियाणा और पंजाब में किसानों की ओर से पराली जलाए जाने को इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह प्रदूषण स्तर बेहद खराब है। हरियाणा के किसान लगातार खेतों में पराली जला रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास भी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हरियाणा के करनाल से बीबीसी पंजाबी सेवा के संवाददाता अरविंद छाबड़ा की ये रिपोर्ट सुनिए।
राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह है पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में पराली को जलाया जाना। हरियाणा के कुछ जिलों का दौरा करते हुए हमने पाया कि जहाँ भी खेत नजर आ रहे थे वहीं जलती हुई पराली का उठता धुआं भी था।
मैं इस वक्त करनाल यमुनानगर सड़क पर हूँ जहाँ पराली को जलाया जा रहा है। एक तरफ खेत है और दूसरी तरफ सड़क और मैं देख सकता हूँ जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहाँ आग ही आग और धुआं ही धुआं हो रखा है।
हमने कुछ किसानों से बात की तो उन्होंने पराली को जलाया जाना अपनी मजबूरी बताया।
ऐसे है जो पराली इसलिए जलाते हैं, एक तो किसान के बस की बात नहीं है इसको उठाना, कहाँ गिरे, और जो सरकार ने यहाँ मशीनें दी हैं वो यहाँ टाइम पे पहुँचते नहीं। अब मैंने खुद ये दो तीन बार फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया।
ऐसा है सरकार जो मशीनें मिलती नहीं है और इस करके बस फिर क्या करा, फिर लेट हो जहाँ लगानी पड़ा।
उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिनों में चुनाव है तो अधिकारियों का डर भी कम है। हमने जब ये मुद्दा कुछ नेताओं के साथ उठाया तो उनका भी कहना था कि इसके लिए किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को।
नहीं देखिए, स्टबल वन का जो बना रखा ना पर्यावरण से इतना नुकसान नहीं है लेकिन किसान को बड़ा भारी नुकसान है। या तो उनको उनकी खरीद की जाए, MSP उसके लिए लगाया जाए, या जो मशीन है कोई मतलब उससे पावर जनरेट भी कर सकते हैं, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव किसान को देना चाहिए ताकि खरीद के उसके पावर जनरेट करें।
हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 25 सितंबर से आंकड़े इकट्ठे किए हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा। इस साल 1072 घटनाओं का पता चला है जबकि पिछले साल इसी दौरान ये संख्या 1111 थी। बोर्ड के सचिव S. नारायणन के मुताबिक
करनाल का हाल सबसे खराब है।
इस साल काफी उम्मीद थी कि पराली जलाने के मामलों में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर और किसानों और नेताओं को सुनकर ऐसी उम्मीदें धुएं में उड़ती नजर आ रही हैं। अरविंद छाबड़ा, BBC, करनाल, हरियाणा।
दिल्ली के प्रदूषण के बाद अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ छपा है। अखबारों के साथ स्टूडियो में गुरप्रीत सैनी मौजूद हैं। जी गुरप्रीत, बताएं।
जी, इंडियन एक्सप्रेस में हेडलाइन लगी है कि 370 और सावरकर पर कांग्रेस नरम पड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि पार्टी का मानना है कि आर्टिकल 370 संविधान के तहत अस्थाई प्रावधान था। उन्होंने कहा कि पार्टी ने संसद में आर्टिकल 370 को हटाने के पक्ष में वोट किया था, लेकिन जिस तरह से इस आर्टिकल को हटाया गया कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। वहीं वीर सावरकर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आक्रामक रुख को उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न देने की जो बात की गई है महाराष्ट्र में, BJP ने अपने जो घोषणा पत्र में कहा है, उन्होंने कहा है कि वो वीर सावरकर के खिलाफ नहीं है उनकी पार्टी, बल्कि वो उस हिंदुत्व की विचारधारा के पक्ष में नहीं है जिसका सावरकर वकालत करते थे।
और ये भी कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर की याद में डाक टिकट जारी किया था, ये भी मनमोहन सिंह ने कहा है। ये भी बातें आ रही हैं।
जी जी, इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है जम्मू कश्मीर को लेकर कि 5वीं से 12वीं तक की परीक्षा की घोषणा कर दी गई है वहाँ, जबकि वहाँ पे अभी शटडाउन चल रहा है और जो माता पिता हैं बच्चों के वो डर रहे हैं और स्कूलों ने कहा है कि सुरक्षा बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। वही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर है कि अमरीका में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश करे 311 भारतीयों को मैक्सिको ने डिपोर्ट कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजस्थान के ड्राइवर की हत्या करने वाले चरमपंथियों की पहचान कर ली है। इस बीच पंजाब के एक फल व्यापारी की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें भी संदिग्ध कश्मीरी चरमपंथियों ने कश्मीर में शोपिया में गोली मारकर घायल कर दिया था।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत। बढ़ते हैं आगे। श्रोताओं, BBC हिंदी रेडियो सेवा आपको महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनसे जुड़े अनसुने किस्से सुनवा रहा है और आपके लिए एक किस्से वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय लेकर आते हैं। आज इन्हीं किस्सों की आखिरी किस्म में सुनिए कि महात्मा गांधी ने कैसे उस दौर में छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया।
महात्मा गांधी छुआछूत के सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा समाज बने जिसमें सब लोगों को बराबरी का दर्जा हासिल हो, क्योंकि सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है, उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दक्षिण भारत के दौरे में जब गांधी मायावरम पहुंचे तो उनका एक नए शब्द से सामना हुआ और वो शब्द था पंचम। ये संगीत की भाषा में तो पंचम सुर बहुत अच्छा माना जा सकता है, लेकिन पंचम का प्रयोग दक्षिण भारत में हरिजनों के लिए, दलितों के लिए किया जाता था और ये कहा जाता था कि वो पंचम इसलिए हैं कि हिंदू धर्म की चार वर्ण की व्यवस्था से बाहर हैं, पांचवा वर्ण है। मायावरम में पंचमों से मुलाकात के बाद गांधी को दक्षिण अफ्रीका के अपने वो दिन याद आए जब वो अब हरिजनों में से, दलितों में से लोगों को घर बुलाते थे खाना खाने पर और महसूस करते थे कि कोई उनका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन एक तरह का दबा हुआ विरोध खुद कस्तूरबा गांधी की ओर से होता रहा। उनको लगता था कि ये शायद भारत पहुंचकर ये समस्या और बड़ी होगी और उनका अनुमान गलत नहीं निकला। जब वो चंपारण जाने वाले थे और बांकीपुर स्टेशन उतरे, पटना का पुराना नाम, तो उनको राजेंद्र प्रसाद के घर ले जाया गया और गांधी के साथ ये मानकर कि वो पता नहीं कौन है, किस जात के हैं, किस क्या उनका धर्म है, उनको बाहर के कमरे में टिका दिया गया। राजेंद्र प्रसाद उस समय अपने घर पर नहीं थे कि उन्हें पहचानते। नौकरों ने उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया, गांधी उससे बहुत खिन्न हुए। ये बात जब वो उन्होंने अपना आश्रम बनाया भारत में पहला कोचरब में अहमदाबाद के पास, तो ठक्कर बापा का एक पत्र लेकर एक आदमी उनके पास आया। ठक्कर बापा ने लिखा था कि आप कहते हैं कि सब लोग बराबर हैं और अगर आश्रम के नियमों का पालन करेंगे तो उनको आश्रम में रहने की जगह दी जाएगी, तो मैं एक हरिजन को आपके पास भेज रहा हूँ, इनको आश्रम में रखने पर विचार करें। दूदा भाई उनका नाम था, उनकी पत्नी दानी बहन और उनकी गोद में एक छोटी बच्ची थी, तीनों को उन्होंने आश्रम में जगह दी तो अहमदाबाद में हंगामा हो गया, जुलूस निकले, नारे लगे। आश्रम को चंदा, जिस पैसे से वो चलता था वो आमतौर पर सवर्ण लोग ही देते थे, उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया। आश्रम बंद होने की नौबत आ गई, आसपास के लोगों ने गाली गलौज शुरू की, दूदा भाई का जीना हराम कर दिया, लेकिन गांधी टस से मस नहीं हुए। जब ये बात उनको पता चली कि कस्तूरबा जाने अनजाने आश्रम में जितनी और महिलाएं हैं उनका केंद्र बन गई हैं और इसका विरोध कर रही हैं दूदा भाई को आश्रम में रखने का, तो उन्होंने कहा ये नहीं होगा। और बहुत, गांधी खुद कहते हैं कि मैंने बहुत ऊंची आवाज में कस्तूरबा से कहा कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, अगर तुम चाहो तो हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ, दूदा भाई आश्रम में रहे, दानी बहन रहीं, सब लोग आश्रम में ठीक ठाक हो गए, धन जो आना बंद हो गया था वो दूसरे स्रोत से आने लगा। लेकिन गांधी अछूतोद्धार के लिए हरिजनों को, मूल समाज का, समाज की मुख्य धारा, अगर उसे मुख्य धारा कहते हैं, में लाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया, और इस हद तक किया कि अगर उनका विवाहित जीवन उससे खंडित हो जाए, उनका परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, तो भी गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
महात्मा गांधी से जुड़े ये किस्से आपको सुना रहे थे मधुकर उपाध्याय। बीबीसी हिंदी रेडियो सेवा की ये विशेष प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। और अब खेल समाचार।
खेल समाचार इंदु पांडे से। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बैट्समैन एडन मार्काराम को निराशा में किसी ठोस चीज पे मुक्का मारना भारी पड़ गया, क्योंकि कलाई में चोट की वजह से वो भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका विशाखापट्टनम और पुणे में करारी हार के बाद पहले ही श्रृंखला गंवा चुका है। और इन दिनों सौरव गांगुली काफी चर्चा में है। माना जा रहा है कि अक्टूबर की 23 तारीख को सौरव गांगुली बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे और करीब 10 महीनों तक इस पद पे काम करेंगे, यानी कि अगले साल अक्टूबर को होने वाले क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में वो अध्यक्ष के तौर पर शामिल रहेंगे, लेकिन इसके बाद उन्हें ये पद छोड़ना होगा। क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन का क्या कहना है उनके रास्ते में आने वाली चुनौतियों को लेकर के?
सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि केवल उनके पास 10 महीने हैं ऑफिस में, उसके बाद जो है टेक्निकली उनका टर्म खत्म हो जाता है और 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, यानी जो कुछ उन्हें करना है वो ये 10 महीने में करना होगा। 2-3 चीजें जो उन्होंने कही है जो महत्वपूर्ण है वो है, एक तो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की हालत सुधारें, दूसरी बात और ये इसके लिए इंटरनेशनल जो है इम्पैक्ट बन सकता है, उन्होंने कहा है कि वो इंडियन क्रिकेट का इंटरेस्ट जो है वो सबसे आगे रखेंगे, तो वो चाहेंगे कि इंडियन क्रिकेट जो है ना सिर्फ नंबर 1 रैंकिंग पर रहे लेकिन टूर्नामेंट भी जीते, तो मेरे ख्याल से ये इशारा डायरेक्टली विराट कोहली कैप्टन और कोच रवि शास्त्री की तरफ है।
और अब बांग्लादेश के साथ भारत में खेले जाने वाली T20 सीरीज के लिए चयनकर्ता 24 अक्टूबर को मुंबई में मुलाकात करने वाले हैं। गांगुली इसी बैठक में चयनकर्ताओं के साथ बात कर सकते हैं। खेल प्रेमियों को इस बात का भी इंतजार है कि महेंद्र सिंह धोनी के करियर में अब आगे क्या होगा। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। तुर्की अमेरिका के कहने पर सीरिया में कुर्दों के खिलाफ सैन्य अभियान रोकने पर राजी हो गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि उनके नए ब्रेक्जिट समझौते को ब्रिटेन की संसद में समर्थन मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलीना गियोर्गेवा ने अमरीका और चीन के बीच व्यापार को लेकर हुई बातचीत में प्रगति का स्वागत किया है। डोनाल्ड ट्रंप के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना है कि यूक्रेन की सैन्य मदद वहां की सरकार पर दबाव बनाने के लिए रोकी गई थी। घोषणा की गई है कि अगले साल का होने वाला G7 सम्मेलन डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित गोल्फ क्लब में होगा। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अमरीका की सबसे बदनाम जेल को बंद करने के लिए न्यूयॉर्क में वोटिंग हुई, जिसके बाद इसे 2026 तक बंद करने का फैसला किया गया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com के पन्ने पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें इजाज़त। नमस्कार।